الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے. اس عنوان کے تحت جو چیزیں موضوع بنی ہیں، ان میں سے ایک چیز نبی کی شفاعت ہے. اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور بات اس میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شفاعت، جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور بندے نے توبہ استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد تین صورتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ تینوں صورتیں زیر بحث آ گئی تھی، یعنی گناہ کا ارتکاب ہوا، کسی بڑے گناہ کی صورتحال سے نکلے، فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، انی کنت من الظالمین، اور بندے نے اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کی توفیق مل گئی ہے، تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. اس چیز کو قرآن مجید نے صراحت سے واضح کر دیا. اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے گناہ کیے، غلطیاں کیں، کبائر تک کا ارتکاب کیا، زندگی اسی میں گزر گئی، کبھی خدا کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی، ندامت نہیں ہوئی، جو زندگی پائی وہ سب انہی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، سرکشی کی، تمرد کی نظر کر دی، اور جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی، نزا کا عالم طاری ہوا، دیکھ لیا کہ فرشتہ اب وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے، تب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو یہ بات پوری صراحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دی کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہی توبہ ہے جو فرعون نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اب بنی اسرائیل کے پروردگار پر ایمان لے آیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اس کے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ عرصے کے بعد، سال، دو سال، چھ مہینے، موقع مل گیا، کچھ توجہ ہوئی، فوراً تو انسان نے توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال توفیق مل گئی، سکرات موت سے پہلے، موت کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے یہ توفیق مل گئی. وہ یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی ہے. اب اس میں بندے کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے درخواست کر دی ہے. یہی وہ اصل میں مواقع ہیں جن میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت کا اذن ملے گا. تو قرآن مجید سے یہ حدود تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں. اس میں جو غلط فہمیاں ہیں بعض، ان کو بھی قرآن مجید نے رفع کیا ہے. جو بنیادی بات واضح ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید اس تصور کو کس طرح واضح کرتا ہے جو اس کے ہاں شفاعت کا تصور ہے. یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے کہ بندے کی طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو اصل میں شفاعت اس کی تائید میں ہوتی ہے. شفاعت کہتے ہی اس کو ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ بندہ حاضر ہو گیا ہے، توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، اب آ گیا. اس کے بعد اس کی توقع کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس کے حق میں کوئی بات کہیں، یعنی اس کی توبہ کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، اور صالحین بھی کوئی بات کہیں اور اللہ بھی ان کو اذن دے. تو یہ تو اس کی حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے لیے عدل کوئی چیز ہے اور نہ جزا و سزا کا وجوب کوئی چیز ہے، یعنی جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ سب اس کے نتیجے میں بالکل باطل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت سے متعلق کیا حدود بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان حدود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی اس بات کی جڑ ہی کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی شخص خود کھڑا ہو کے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان تذلل کے ساتھ خود کھڑا ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ فرمائی کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعنی شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے شفاعت کا اذن دینا ہے یا نہیں دینا۔ یعنی بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو گیا ہے، توبہ و استغفار کا بدرقہ لے کر پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور رحم کرم اور عنایت کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی صالح انسان یا سب صالح انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے، یہاں منافقین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ اور پیغمبر بھی تمہارے لیے یہ بات کرے۔ تو ظاہر ہے گویا پیغمبر کو اذن دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں اب دعا کریں، آپ ان کے حق میں استغفار کریں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنی بات ان کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو توبہ کا رویہ خود انسان نے اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ اذن مل جاتا ہے کہ اب کوئی کہنا چاہتا ہے یا کچھ اس کے حق میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے وہ اس کے فرشتوں کو حاصل ہے، جبریل امین کو، ان فرشتوں کو کہ جو عرش الٰہی کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو کہ جو ملاء اعلیٰ میں ہیں، ان فرشتوں کو جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ دے رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یعنی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا، کسی فرشتے سے معاملہ کر لیا، کسی پیغمبر سے معاملہ کر لیا، کسی انسان سے معاملہ کر لیا، پہلے اس پروردگار کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفاعت سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے، یعنی اجازت پہلے ہونی ہے۔ کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، یہ میں نے دو مقامات کا انتخاب کیا۔ اس میں سورہ زمر ہے، 43-44 آیت ہے، ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یاکلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ یعنی پہلا ہی جملہ بہت سخت تحدید کا ہے۔ उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल में दूसरों को सिफारशी बना रखा है? इनसे कहो अगरचे वो कुछ इख्तियारात ना रखते हों और ना कुछ समझते हों, कहो कि सिफारिश तमाम तर अल्लाह ही के इख्तियार में। यानी ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस मनसब पर फायज कर दिए गए हैं, वो अल्लाह ताला का दामन पकड़ लेंगे, वो खुद आगे बढ़ जाएंगे, वो कोई बात कर लेंगे। तो इरशाद फरमाया कि ये तमाम तर अल्लाह का इख्तियार है, ज़मीन और आसमानों की बादशाही उसी की है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी ये इख्तियार की नफी कर दी कि अल्लाह इख्तियार रखता है, जिस तरह वो सज़ा का इख्तियार रखता है, जज़ा का इख्तियार रखता है, करम रहमत इनायत का इख्तियार भी उसी का है। जब वो इसका फैसला कर लेगा, यानी इस्तेहकाक तो नहीं है, ऐसा नहीं कि आदमी महज अपने आमाल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला के यहाँ सरफराजी पा गया। इस्तेहकाक का मामला तो अगर है तो फिर तो जाहिर है कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम अल्लाह की नवाजश की ज़रूरत है कि वो तौबा कबूल कर ले, माफ़ कर दे, इंसान के मजमूई रवैये की बुनियाद पर इनायत फरमाए। तो ये इनायत का फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे। अगर वो इनायत का फ़ैसला कर लेते हैं, गोया राज़ी हो गए, करम फरमाई के लिए राज़ी हो गए, इनायत के लिए राज़ी हो गए, रहमत के लिए राज़ी हो गए, तो अब कोई दूसरा भी बात कर सकता है। तो शफ़ात गोया अल्लाह के इख्तियार में है, ये अल्लाह के इख्तियार से बाहर कहीं नहीं पाई जाती। दूसरी आयात हैं 26-27 सूरह अंबिया की, वकालू इत्तखज़र रहमान वलदा सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहू बिल कौल वहुम बे अम्र ही या मलून। सबसे बढ़कर फरिश्तों ही के बारे में ये कहा जा सकता था। तो ये साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, ये कहते हैं कि खुदाए रहमान की औलाद है, वो इस तोहमत से पाक है। यानी वो फरिश्तों को, जो मुखातबीन है कुरान के यहाँ, वो फरिश्तों को खुदा की बेटियाँ समझते थे। और जिस तरह से बेटियाँ बाप के गले में बाहें डाल देती हैं और बात मनवा लेती हैं, कमो बेश ऐसा ही तसव्वुर कायम किया हुआ था। तो कुरान मजीद ने कहा कि पहले तो ये बात ही बेबुनियाद है, अल्लाह की औलाद, ये तो अल्लाह पर तोहमत है। ये कहते हैं कि खुदाए रहमान की औलाद है, वो इस तोहमत से पाक है। फरिश्ते जिनको ये अहमक खुदा की बेटियां समझते हैं, वो उसकी औलाद नहीं बल्कि मुकर्रब बंदे हैं, वो उसके हुजूर कभी बढ़कर नहीं बोलते और उसके हुक्म की तामील करते हैं। यानी ये जो फरमाया कि ला यस्बिकूना बिलकौल, तो मतलब ये है कि उसकी बारगाह में अपनी तरफ से बात करने का उनको भी कोई यारा नहीं। तो किसी पर भी इंसान को ये भरोसा नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के मुकाबिल में खड़ा होकर वो कोई बात कह सकेगा या अपनी तरफ से कोई सिफारिश पेश कर सकेगा। अल्लाह का इज़्न होगा, उसके बाद ही इसका इम्कान है। उस उसूल को जहन में रखिए जो ऊपर की आयत में बयान हो गया कि लिल्लाहि शफ़ात जमीया, सिफारिश तमाम तर अल्लाह ही के इख्तियार में। तो पहली बात जो कुरान मजीद ने वाज़े फरमाई वो सिफारिश के बारे में ये है। दूसरी बात ये फरमाई है कि इज़्ने इलाही के बाद भी उसी के बारे में ज़ुबान खोलने की इजाज़त होगी जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाएगा। यानी इज़्न मिल गया, किसी फरिश्ते को मिल गया, किसी पैगंबर को मिल गया, पैगंबरों को मिल गया, साले इंसानों को मिल गया कि कोई बात कहनी है तो कहिए, लेकिन क्या जिसके बारे में चाहेंगे कह देंगे? यानी उनकी अपनी पसंद नापसंद के ऊपर सिफारिश का इख्तियार होगा। इरशाद फरमाया है कि इज़्ने इलाही के बाद भी उसी के बारे में ज़ुबान खोलने की इजाज़त होगी जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाएगा। कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी के मुतल्लक कोई बात ना कर सकेगा। यानी ये अल्लाह का इज़्न है कि सिफारिश अब मौका आ गया है की जाए, और ये भी अल्लाह का इज़्न होगा कि किसके बारे में की जाए। दोनों बातों का इज़्न वहाँ से मिलेगा। तो दूसरी बात यह है, सूरह अंबिया ही में 21-28 आयात हैं। सूरह अंबिया 21वीं सूरह है और 28 आयत है। यालमु मा बैना एदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफऊन इल्ला लमन इर्तजा व हुम मिन खशियतिही मुशफिकून। उनके आगे और पीछे जो कुछ है सब उसको मालूम है, वो किसी की सिफारिश नहीं करते उसके सिवा जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाए और उसकी हैबत से लरजते रहते हैं। یعنی اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیبت سے لرز رہے ہوتے ہیں اور بات اسی کے بارے میں کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں 109-110 آیات میں فرمایا ہے, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے, یعنی رحمان کسی کو اجازت دے, کیونکہ اختیار سارا اللہ کا ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے, یعنی یہ کہ کس کے لیے بات کہنی ہے یہ بھی اللہ کی پسند پر ہے, وہ کس کو اذن دیتے ہیں, کس کو اجازت دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی کون ہے کہ جو اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے, ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے, وہ جانتا ہے بندے نے کیا کیا, بندے کا علم کا حال کیا تھا, بندے کے عمل کا حال کیا تھا, کیا توشہ لے کر آیا ہے, اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا خیر ہے کیا شر ہے. تو چونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ رحمت کا مستحق ہے, کوئی سفارش کرے, کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے. اور پھر یہ کہ یہ بندہ ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اب اللہ اس کے لیے رحمت ہی کا فیصلہ کرنے والے ہیں. تو گویا سفارش کا مرحلہ اس وقت آتا ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی. یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اللہ کا عدل ہر چیز پر حاوی ہے, اللہ کی رحمت زمین و آسمان کی وسعتوں پہ چھائی ہوئی ہے. تو اس لیے جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ صحیح بات کرے گا, یعنی واقعتاً مستحق ہو گیا ہے, واقعتاً یہ بندہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے, اس پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے, تو جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صحیح بات ہوگی. عام طور پر تو انسان خیال کرتا ہے نا کہ چلیے جی ہمارا بڑا رشتہ ہے, بڑا تعلق ہے, ہمارا بڑا زور ہے, اثر ہے, کچھ تدلل کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہم منوا لیں گے اپنی بات. ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اختیار بھی میرا ہے, میں اس کائنات کا خالق ہوں, بندے میرے ہیں, میرا اختیار ہے, میں سفارش کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ اب اس کی اجازت ہے, تو تب کوئی بولنے کی جسارت کرے گا. جس کو کہوں گا, جس کو اذن دوں گا وہی بات کرے گا, جس کے حق میں اذن دوں گا اسی کے حق میں بات کی جائے گی, اور جو بات کی جائے گی وہ ہر حال میں صحیح بات ہونی چاہیے. چنانچہ سورہ نبا کی یہ دیکھیے 38 آیت ہے, لا يتکلمون الا من نزل له الرحمن وقال صوابا. اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں, یعنی جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور محشر کا بازار گرم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, تو فرمایا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا, نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے. رحمان اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی شخص زبان کھول سکے گا. اور دوسری بات کیا ہے, وقال صوابا, بات ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں, اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کر سکتے, کوئی مبالغہ نہیں کر سکتے, کوئی چیز کم و بیش نہیں کر سکتے, سچی بات, صحیح بات. یعنی گویا یوں کہ جس طرح سے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فی الواقع یہ شخص رحمت کا مستحق ہو گیا ہے, تو آپ کو بھی یہی بات کہنی ہے. اور یہ آپ کی بات آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, اس کی بارگاہ میں آپ بات کریں گے, اللہ آپ کی بات قبول فرمائے گا. یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے یا کوئی ملازم ہے, وہ پیش ہوتا ہے, غلطی کی ہے, کوتاہی کی ہے, کسی بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے, لیکن ندامت ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب معافی کرنا چاہیے, درگزری بہتر ہے, سزا نہیں دینی, لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے माँ से पूछते हैं, भाइयों से पूछते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का, माफ़ कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल है जो कुरान मजीद से सामने आती है, यानी बारगाह एक ही है, उसी परवरदिगार का फैसला है, रहमत पर आमादा उसी को होना है, करम नवाजी का फैसला उसी ने करना है। वो ये इज्जत किसी को बख्शेगा कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और उसके इज्जत बख्शने ही पर कोई कहने की जसारत करेगा, और ये भी बताएगा कि किसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उसी के बारे में बात की जा सकेगी। यानी ये भी नहीं हो सकता कि इज़न से पहले कोई बात करने की जसारत कर ले, ये भी नहीं हो सकता कि बात करने की इजाज़त तो अलिफ के बारे में मिली तो आपने कहा मौका है तो चलिए बे के बारे में भी बात कर लेते हैं। नहीं, फरमाया ये दूसरा फैसला भी अल्लाह ही करेगा कि किसके बारे में बात की जाए, और बात आप ना बना सकते, ना बढ़ा सकते, ना कम कर सकते, आपको ठीक सच्ची बात करनी है, यानी जो आपके नज़दीक सही चीज़ है। आप मुस्तैक समझते हैं कि ये आदमी बावजूद इसके कि इसने गुनाह किया है, बावजूद इसके कि गलती की है, लेकिन ये कर्म का, इनायत का मुस्तैक है, अगर आप दयानतदारी से ये समझते हैं तो ये सही बात ही आपको कहने का वहाँ मौका मिलेगा। तो शफ़ात के बारे में ये चीज़ें हैं जिनको कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया। चुनांचे मैंने लिखा है कि शफ़ात के बारे में ये कुरान का नुक्ता नज़र है, इस सिलसिले की रवायतों को इसी रोशनी में देखना चाहिए। ये बात पर बार बार तवज्जो दिला चुका हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ा सानिया ये हुआ है कि कुरान मजीद जो फोर कॉर्नर्स मुतय्यन करता है, हम उसका लिहाज किए बगैर रवायात की तरफ रजू करते हैं और तरतीब उलट देते हैं। यानी पहले रवायात, किस्से, वो हमारे सामने आते हैं, और फिर उनकी रोशनी में जब एक चीज़ तय कर लेते हैं तो कुरान मजीद क्या कह रहा है, क्या हुदूद तय कर रहा है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके या तो मुतवाजी बातें बयान कर देते हैं और या कुरान मजीद की उनकी रोशनी में तावील करना शुरू कर देते हैं। और वो तावीलात ऐसी होती हैं कि खुदा व मुस्तफ़ा रहा हम खबर नहीं, यानी ऐसी तावीलात के जिनको ना कुरान मजीद के अल्फाज कबूल करते हैं, ना उसका सियाक व सबाक कबूल करता है, ना बैसियत मजमू कुरान दीन का जो तसव्वुर पेश करता है उसको कबूल करता है। तो इस तरतीब को बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। यानी ये बात कि अगर कुरान मजीद ने किसी चीज़ को मौजू बना लिया है, उसने कोई फ्रेम तय कर दिया है, उसने कोई फोर कॉर्नर्स चारों गोशे मुतय्यन कर दिए हैं, उनसे बाहर नहीं निकला जा सकता। इसलिए कि ये खुदा की किताब है, और खुदा की किताब क्यों दी गई, किस लिए नाजिल की गई, कुरान मजीद ने जगह जगह इस बात को वाज़े किया है कि इस किताब के नज़ूल का मकसद ही ये है कि ले यहकुमा बैनन्नास फी मख्तलफू फी, ताकि इख्तलाफात का फ़ैसला कर दे। हमने तरतीब उलट दी है, यानी कुरान मजीद की तावील तशरी के लिए हमने बाहर कुछ चीज़ों को फ़ैसला कुन बना लिया है, जबकि होना ये था कि खुद उन चीज़ों के रद्दो कबूल का फ़ैसला कुरान की रोशनी में किया जाता। यानी कुरान मजीद इसका मोहताज नहीं है कि बाहर की कोई चीज़ हमें उसके समझाने में मददगार हो। वो दर हकीकत इस मुकाम पर खड़ा है कि बाहर अगर कोई चीज़ अल्लाह के पैगंबरों की निस्बत से बयान हो रही है, माजी में हो रही है, यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आपके ज़माने में, आपके बाद, तो वो फ़ैसला करे और बताए कि इसमें से क्या कबूल करना है, क्या कबूल नहीं करना है। तो हमारे पास जो रवायात का ज़खीरा है, मैंने उसमें से 1200 के करीब रवायात अपनी इस किताब में मुंतखब की हैं। इससे पहले भी इंतखाब का ये अमल होता रहा है, हमारे जलील कदर मुहद्दिसीन करते रहे हैं, इस वक्त भी इसी मौजू पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उनमें बुनियादी चीज़ क्या है, वो ये कि हर हाल में कुरान मजीद ने जो कायदे तय कर दिए हैं उनके अंदर उसको आना होगा, क्योंकि वो क्या है, वो असल में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से लोगों की बयान की हुई बातें हैं। तो लोगों की बयान की हुई बातें ना खुदा की किताब पर हाकिम हो सकती हैं, ना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा सुन्नत पर हाकिम हो सकती हैं। यानी जो आपने सुन्नत जारी कर दी, नमाज, रोज़ा, ये सब चीज़ें, और जो मुसलमानों के इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो रही है, उसमें भी कोई तरवीम तगैर नहीं कर सकती। और कुरान मजीद ने जिन चीज़ों को वाज़े कर दिया है, जिनके हदूद तय कर दिए हैं, उस पर भी असरअंदाज नहीं हो सकती। इनके अंदर रख कर उनको देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो ये चीज़ है जिसके पेश नज़र मैंने यहाँ फैसला ये नकल किया है कि शफात के बारे में ये कुरान का नुक्ता नज़र है। क्या नुक्ता नज़र है? बंदे की तरफ से तौबा इस्तिगफार के बाद ही शफात का मौका पैदा होता है। पहली बुनियादी बात यह है। इसके बाद अल्लाह इज़्ज़त देगा, यानी अल्लाह ताला के पास शफात का इख्तियार है। ये यूँ नहीं है कि कुछ लोगों को ये इख्तियार दे दिया गया है, ये अल्लाह के पास है इस वक्त भी, ये अल्लाह के पास है कयामत में भी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे की तरफ रहमत की कोई बात कही जा सकती है तो इज़्ज़त मिलेगा वहाँ से। फिर किसको इज़्ज़त मिला, किसके बारे में मिला, ये भी अल्लाह ही तय करेगा और सही बात कहने का मौका होगा। कोई बात बनाने बिगाड़ने कमोबेश करने का किसी के पास हक नहीं है। शफात के बारे में ये कुरान का नुक्ता नज़र है। इस सिलसिले की रवायतों को इसी रोशनी में देखना चाहिए। यानी ये जुमला क्यों लिखा गया है? ताकि तरतीब बिल्कुल वाज़े हो जाए। यानी आप यहाँ से देखेंगे कुरान मजीद ने जो चीज़ें तय कर दी हैं, एक एक रवायत को उसके मुताबिक देखा जाएगा। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो बज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ नज़र आती है, तो तावील कुरान की नहीं होगी, रवायत की तावील होगी। यानी उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई तख़सीस आयद करनी है तो उस पर की जाएगी। अगर कोई तगैयुर करना है तो उसमें तजवीज़ किया जाएगा। और अगर इसके बावजूद कोई तावील नहीं होती तो फिर रावियों के तसर्रुफात समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। पूरी बात फिर सुन लीजिए। शफात के बारे में ये कुरान का नुक्ता नज़र है। इस सिलसिले की रवायतों को इसी रोशनी में देखना चाहिए और इससे कोई चीज़ मुतजाविज़ नज़र आए, यानी ये जो बातें बयान कर दी गई हैं, अगर इनसे मुतजाविज़ बातें नज़र आएँ, और वो आएँगी बाज़ चीज़ें नज़र आए, तो उसे रावियों के तसर्रुफात समझ कर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यानी ये समझ लेना चाहिए कि रावी ने बात सुनने में गलती की है, बयान करने में गलती की है, सियाक व सबाक पर नज़रअंदाज कर दिया है, बात किस मौके पर किसके बारे में कही जा रही थी वो चीज़ नज़रअंदाज हो गई है। ये तरतीब उलट देनी है। यानी मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ अपनी किताबों में, अपनी गुफ्तगुओं में, सवालात के जवाबात में, कि सबसे बड़ी चीज़ जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी है वो तरतीब को दुरुस्त करना है। इसको बदकिस्मती से बाज़ लोग रवायात के इनकार पर महमूल कर लेते हैं। ये इनकार नहीं, तरतीब को दुरुस्त करने का अमल है। यानी कुरान मजीद हुकूमत करेगा, कुरान मजीद बोलता है, और बोलता कैसे है, ख़ुद कहता है कि ये बिलसान अरबियन मुबीन नाजिल हुआ है, वाज़े तरीन अरबी ज़ुबान में। और मुबीन क्या है? वाज़े कर देने वाली अरबी। यानी हम जब वाज़े का लफ्ज़ बोलते हैं तो एक लाजिम मफहूम ज़हन में आता है, जबकि असल में क्या है? वाज़े कर देने वाली अरबी। ऐसी अरबी ज़ुबान में है कि जो कोई भाम नहीं छोड़ती। ये ख्याल करना कि कुरान मजीद में जो बातें हैं वो समझ में नहीं आ सकती, सबसे बढ़कर समझ में आने वाली चीज़ ही कुरान है। क्योंकि ये कुरान है कि जो अल्लाह की किताब की हैसियत से हमें दिया गया है। ये कुरान है कि जिसमें अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में बात नकल हो गई है। ये कुरान है कि जिसके नकल और रिवायत में कोई इंसान दरमियान में नहीं आया कि वो अपनी तरफ से कोई तगैयुर कर दे, तब्दीली कर दे, या बात के अपने फहम को दाखिल कर दे। अल्लाह ही के अल्फाज हैं और अल्लाह ताला के ये अल्फाज एक किताब की सूरत में है। यानी ये बिखरे हुए जुमले नहीं हैं रवायतों की तरह। इनका सियाक होता है, इनका सिबाक होता है, ये एक सूरा के अंदर बात बयान हो रही होती है, वहाँ मौजू क्या है, किस पस मंज़र में बात हो रही है, सब कुछ वाज़े हो जाता है। तो कुरान मजीद दीन से मुतल्लक तमाम मुहकमात को बिल्कुल वाज़े कर देता है। जब वो वाज़े कर देता है तो इसके बाद अब जाहिर है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई शख्स ज़ैद बकर कोई बात बयान कर रहा है तो वो सर आँखों पर ज़रूर देखेंगे उसको, लेकिन देखते वक्त इस चीज़ का लिहाज रखेंगे कि उसको समझने के लिए कुरान की ज़रूरत है। कुरान को समझने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद तो ये कहता है कि मेरी किसी बात में कोई ऐंच पेंच है ही नहीं, इसमें तुम कोई कजी पा ही नहीं सकते, इसमें ना बातिल दाएं से दाखिल हो सकता है ना बाएं से दाखिल हो सकता है, ये तो खुदा की आखिरी हुज्जत है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि कुरान मजीद ने अपना नाम मीजान रख लिया है, ये एक तराजू है, तोलिए इसके ऊपर। तोलने की चीज ये है, आपके पास आप कदीम सहीफों से कोई चीज ले आए, आप फलसफे से कोई चीज ले आए, आप इल्म कलाम से कोई चीज ले आए, आप सूफियाना रवायत से कोई चीज उठा लाए, आप किसी के इज्तिहाद को पेश कर रहे हैं, आप कोई रवायत पेश कर रहे हैं, ये कुरान मजीद है कि जो उसमें ये फैसला करेगा कि क्या कबूल करना है और क्या रद्द करना है। ये मीज़ान है, यानी तोलना है इसके ऊपर, सोना है या पीतल है, क्या चीज़ है जो आप लाए हैं, तो इस पर तोल ली जाएगी। और उसके बाद क्या कहा है कि ये अल्लाह ताला ने, अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब वल मीज़ान, कि अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल की है गोया कि एक मीज़ान नाजिल की है, एक तराजू नाजिल की है, तोलने की एक चीज़ नाजिल की है। क्यों नाजिल की है? लियकूमन नास बिलकिस्त, ताकि लोग दीन के मामले में ठीक जगह पर आ जाएं, यानी उनके फिक्र में, उनके इल्म में, उनके अमल में कोई कज पेच बाकी ना रहे। ये किताब इस मकसद के लिए नाजिल की गई है, इस किताब का ये होना चाहिए मुसलमानों के यहाँ। और ये मैंने ख़ास तौर पर यहाँ इसलिए तंबीह की या तवज्जो दिलाई है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला के हुजूर में शफात के बातिल तसव्वुरात ने आखिरत, जजा, सजा, अदल, हर चीज़ को बिल्कुल धरम भरम करके रख दिया। और वो चीज़ें पैदा कहाँ से होती हैं? वो रवायात से पैदा होती हैं। और रवायात का मामला ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई, कोई खुतबा दिया, लोगों को किसी सवाल का जवाब दिया, अब सुनने वाला उसको अपने ज़ौक से अख्ज़ करता है, अपनी सलाहियत के लिहाज से अख्ज़ करता है, और बाज़ औक़ात बयान करते वक्त नज़रअंदाज कर देता है कि बात किस मौके और महल की थी, किसी ख़ास शख्स के बारे में बात हो रही है। मैं हदीस का दर्स दे रहा था तो उसके दौरान में अब मिसाल के तौर पर ये रवायत आ गई कि एक बीवी जिसका बच्चा फौत हो गया है, हुजूर उसे बशारत दे रहे हैं जन्नत की, तो वो बीवी कौन है? यानी वो एक मोमिना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की खातून है, उसको आपकी सहाबिया होने का शरफ़ हासिल है। अब देखिए, ईमान, उसका सहाबिया होना, उसका हुजूर के पास आना, ये सारी बातें वहाँ मुकद्दर हैं। इनको नज़रअंदाज करके आप ये कहें कि कुफर हो, ईमान हो, फिस्क हो, फजूर हो, बच्चा मर गया, सब्र कर लिया तो बस जन्नत मिल गई। तो जितनी भी रवायात हैं उनके ऊपर ये तख़सीसात, ये शरायत आयद करनी ज़रूरी होती हैं। क्यों? मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि वो लोगों का बयान है, वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान नहीं है कि आप बराए रास्त एक बात फरमा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर तो सरे तस्लीम खम, हम गुफ्तगू ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, यानी आपके सामने कौन जसारत कर सकता है। लेकिन जिस वक्त कोई दूसरा शख्स आपकी बात बयान कर रहा है और वो किसी और को बयान कर रहा है और वो किसी और के सामने बयान कर रहा है, तो एक सदी के दौरान में इतने वास्तों से एक बात हम तक पहुंच रही है, उसको कुरान मजीद पर हुकूमत करने का हक कैसे दिया जा सकता है? ये वो बुनियादी बात है कि जिसको समझने की भी ज़रूरत है और समझाने की भी ज़रूरत है कि कुरान मजीद के मुकाबिल में कोई चीज़ नहीं आ सकती, उसके मुतबाजी कोई चीज़ नहीं आ सकती। उसने जिन चीज़ों के हुदूद मुतय्यन कर दिए हैं उन हुदूद को कोई चीज़ लांग के बयान नहीं की जा सकती। ये देखिए, बाज़ औक़ात बड़ा बार बसा औक़ात ऐसा होता है कि आप पूरा का पूरा कुरान मजीद सामने रख दीजिए और ये बताइए उसको कि ये देखिए, ये पस मंज़र है, ये कुरान बयान कर रहा है, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, लोग एक किस्सा जवाब में सुना देते हैं, जबकि किस्सा उन अफराद की हिकायत है, रिवायत है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी वो किस्सा लोगों ने बयान किया है, हम जब उस पर तनकीद कर रहे हैं तो माज अल्लाह खाकम बदहन अल्लाह के पैगम्बर पर तनकीद नहीं कर रहे होते, उस रावी पर तनकीद कर रहे होते हैं। हमारे मुहद्दिसीन जब उसका किरदार देख रहे होते हैं, जब उसके हिफ्ज़ो इतकान का जायज़ा ले रहे होते हैं, जब ये देख रहे होते हैं कि ये शख्स तो अच्छा भला है लेकिन जिन साहिब से बात बयान कर रहा है उनसे तो इसकी मुलाकात ही साबित नहीं है, और इस तरीके से गोया उसकी सीरत, किरदार, हिफ्ज, इतकान, तारीख सबको उधेड़ कर रख देते हैं, तो ये क्यों करते हैं वो? यानी अगर वो ये माने कि ये तो अल्लाह के रसूल की बात है, तो फिर तो उनको कोई हक नहीं है कि वो ये करें। वो ये जानते हैं कि ये रावी का बयान है, ये उसने बात बयान की है, ना बयान करता तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जलीलुल कदर सहाबा ने बयान नहीं किया, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मामूर नहीं किया था कि जाके बयान कर दो, उसने अपने शौक से बात बयान कर दी है। अब चूंकि उस बात की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई है, तो हमारे लिए वो बड़ी अहमियत की चीज़ बन गई। लेकिन क्या इस दर्जे अहमियत की चीज़ बन गई कि हम कुरान को नज़रअंदाज कर दें? कुरान मजीद जिस चीज़ को बयान कर रहा है उसको एक तरफ रख दें। यहाँ पर एक सवाल लोग बाज उठा देते हैं, और वो सवाल ये है कि ये जो कुछ आप कुरान मजीद को समझ रहे हैं, ये तो आपका फहम है ना, यानी आपने समझा है कुरान मजीद को इस तरीके से सरी चीज़ भी सामने रख दीजिए तो ये कहा जाता है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो जो रवायत है, रावी बयान कर रहा है, उसको किसने समझा है? उसको भी हम नहीं समझा है। तो ये असल में जो उधर से समझ में आ रहा है और जो इधर से समझ में आ रहा है उसका तकाबुल है। यानी ये पहले देखिए तो कहाँ से जो बात समझ में आई है वो तरजीह पाएगी, ज़ाहिर है कुरान मजीद। अच्छा, फिर इसमें ये बात भी वाज़ह तौर पर जान लेनी चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि ये कुरान का फहम है, तो किसी चीज़ को फहम करार देने का मतलब क्या होता है? यानी जब वो आप बात बयान करें तो कुरान मजीद के अल्फाज उसको आगे बढ़ के कबूल कर लें। यानी हमें मिसाल के तौर पर गालिब के किसी शेर को समझने में गलती लग रही थी, या हम एक बात को ठीक समझे हुए थे, किसी दूसरे आदमी ने आके ये बताया कि गालिब के शेर का मतलब ये है, तो अब क्या महज इसलिए मान लिया जाएगा कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, गालिब के बराह रास्त शागिर्द हैं? नहीं, वो अब समझाएंगे कि ये जो बात है ये कुरान के या गालिब के अल्फाज या फिरदौसी के अल्फाज या शेक्सपियर के अल्फाज इस तरह कबूल कर रहे हैं। तो जिस वक्त अल्फाज गवाही देंगे, मतन कबूल कर लेगा, अब वो फहम होगा। लेकिन अगर मतन कबूल नहीं करता तो बहुत माजरत के साथ वो फहम नहीं है, वो एक साहिब की राय है जिसको असल मतन के ऊपर तरजीह नहीं दी जा सकती। तो बुनियादी बात जिसको जहन नशीन करना चाहिए और कराना मकसूद है वो ये है कि ये शफात का बाब हमारे यहाँ जो सूरत इख्तियार कर गया है वो तमाम तर रवायतों की बुनियाद पर है। रवायतों में कुछ बातें सियाक सबाक से हटकर, कुछ मुबालगे के साथ, कुछ बाज़ तसर्रुफात के साथ बयान हो गई हैं, जिससे एक बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर सामने आती है और मालूम होता है कि खुदा की बारगाह में लोगों की पेशी वो तो महज एक तकल्लुफ ही होगा, वरना बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ अपने अपने लोगों को बचा कर ले जाएंगी, ये तस्वीर बनती है। तो रवायतों में क्या बातें बयान हुई हैं, उनकी क्या नौईयत है, उसको तो हम अलग से वाज़े करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या काबिले कबूल है क्या नहीं है। यहाँ उसूली बात क्योंकि कही गई थी तो इसलिए मैंने तवज्जो दिलाई, और इसलिए तवज्जो दिलाई कि ये सरसरी मामला नहीं है। इससे असल में अल्लाह ताला का तसव्वुर, महशर का तसव्वुर, आखिरत का तसव्वुर, जवाबदही का तसव्वुर, अदले इलाही का तसव्वुर, रोज़े जजा का पूरा फ़लसफ़ा बेबुनियाद हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि ये बयान किया जाए कि शफात असल में है क्या चीज़। यानी ये शफात है कि जो आखिरत के पूरे तसव्वुर को बातिल कर देती है अगर इसमें गलती हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने क्या इत्मीनान दिलाया है मुझे? ये इत्मीनान दिलाया है कि मैं इंसाफ करूँगा, मैं अदल का फैसला करूँगा, मुझसे किसी बेइंसाफी की तवक्को ना की जाए। ये सूरत हाल है, ये हर आदमी जानता है कि अदल और बेइंसाफी के माबैन कुछ रहमत के, माफ़ी के, अफ़्व दरगुजर के मौके भी होते हैं। तो अफ़्व दरगुजर के मौके हैं जिनमें शफात का इज़्ज़त दिया जाएगा, ये कुरान से वाज़े है बिल्कुल। लेकिन किनको दिया जाएगा? फ़ैसला खुदा करेगा। किसके लिए दिया जाएगा? फ़ैसला खुदा करेगा। और सही और सच्ची बात सुनेगा कोई उसके हुजूर में बात को दाएं बाएं नहीं कर सकता, कोई अपनी तरफ से किसी बात को शामिल नहीं कर सकता। इसमें चूंकि रवायतें गलतफहमी का बायस बनती हैं तो मैंने यह अर्ज़ कर दिया कि उनका जायज़ा लिया जाएगा। अगर वो इस फ्रेम के अंदर आती हैं, ये जो कुरान मजीद ने गोशे मुतय्यन कर दिए हैं इनके अंदर बात बयान कर रही है, तो वो कबूल होगी। अगर नहीं है तो تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ راویوں نے اپنے تصرفات سے بات کو بگاڑ دیا ہے. اور یہ کوئی جان بوجھ کے ضروری نہیں کیا جا رہا ہو, یہ بعض اوقات غلط فہمی سے ہوتا ہے, بعض اوقات موقع کلام کو نہ سمجھنے سے ہوتا ہے, اور روایتوں کے فہم میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.